الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان المبارک کا مہینہ اس پہلو سے بہت اہم ہے کہ یہ خدا کے ساتھ باندھے ہوئے عہد کی پاسداری کا مہینہ ہے. ہم نے جو انبیاء کے ذریعے سے اللہ کے ساتھ عہد باندھ رکھا ہے کہ ہم اس کے حکم کی پیروی کریں گے, رمضان اس کی بہترین صورت ہے. اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہی, روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. اس کے معنی یہ ہیں کہ روزے کی حالت میں انسان سوائے اس کے کہ وہ کھانے کے وقت میں کھانا نہیں کھاتا اور پینے کے وقت میں پانی نہیں پیتا اور کوئی ظاہر ہونے کی چیز نہیں ہے کہ وہ روزے کی حالت میں ہے یا نہیں ہے. یہ ایک ایسی نیکی ہے کہ جس میں ریاکاری کے امکانات بہت کم ہیں. سورہ بنی اسرائیل کی جن آیات کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اس میں اگلا حکم اللہ تعالیٰ نے ایفائے عہد ہی کا دیا ہے کہ ہم جب کسی سے کوئی وعدہ کر لیں, کوئی عہد باندھ لیں, کوئی میثاق باندھ لیں یا کوئی معاہدہ کر لیں تو پھر اس کی پاسداری کریں. اس میں اتنا سخت حکم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے قریش مکہ پر عذاب کی سورہ نازل ہوئی سورہ توبہ, تو اس میں کہا گیا کہ جب یہ اشر حرام ختم ہو جائیں تو پھر جہاں پاؤ ان کو مار ڈالو. اس موقع پر بھی فرمایا کہ سوائے ان کے جن کے ساتھ تم نے کوئی معاہدہ کر رکھا اور وہ اس معاہدے کی پاسداری کر رہے ہیں. یعنی جب اللہ کا عذاب آ گیا ہے, اعلان جنگ ہو گیا ہے, داروگیر کا حکم دے دیا گیا ہے کہ پکڑو اور مارو, لیکن معاہدے والوں کو چھوڑا جائے گا. اس کے معنی یہ ہوئے کہ عہد کی استواری کا خود اللہ تعالیٰ نے اتنی شدت کے ساتھ اس کا احساس کیا ہے کہ اپنے عذاب کو بھی ٹال دیا ہے. تو ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں خدا کے اس سنت پر, خدا کے اس طریقے کے مطابق عہد معاہدے کی پابندی کرنی چاہیے. عہد معاہدے کی خلاف ورزی بھی ایک کبیرہ گناہ ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس آیت میں یہ حکم دیا ہے وہ ان کبیرہ گناہوں کی فہرست میں دیا ہے جن کو کبائر الاسم اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے. تو کبیرہ گناہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری دینی, سماجی, سیاسی اور عام سماجی زندگی سب کے ساتھ عہد پہ کھڑی. مثال کے طور پر قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے میثاق النبیین لیا ہے. میثاق النبیین کا مطلب ہے کہ ہم نبیوں کو ماننے کے معاہدے میں اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور جب اس معاہدے کی خلاف ورزی کر دیں گے تو کفر ہو جائے گا. اسی طرح دیکھیے کہ ہماری جو لین دین ہے, ہم جب خرید و فروخت کر رہے ہوتے ہیں تو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز 10 روپے مجھے دے دیجئے, یہ بھی ایک عہد معاہدہ ہو رہا ہوتا ہے. اسی طرح جب شادی کا معاملہ آتا ہے تو ایک معاہدہ ہوتا ہے, دونوں میاں بیوی ایک عہد میں بن جاتے ہیں. حکومت کے ساتھ ہمارا کیا معاہدہ ہے کہ ہم آپ کو ٹیکس دیں گے, آپ ہمیں اس کے عوض میں یہ چیزیں فراہم کریں گے, آپ حکومت کیجئے ہم آپ کی اطاعت کریں گے, یہ بھی ایک عہد معاہدہ ہو گیا. تو گویا زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے, کوئی پہلو ایسا نہیں ہے, گھر کی زندگی سے لے کر سیاسی زندگی تک ہر جگہ پہ ہم عہد اور معاہدے کر رہے ہوتے ہیں, ان کو نبھا رہے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. یہ عہد, جیسا میں نے عرض کیا, زندگی کے ہر شعبے میں چھایا ہوا ہے. اس کے بغیر زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جو چل سکتا ہو. ہم گھر سے لے کر سیاسی میدان تک قدم قدم پر عہد باندھتے اور ان کو نبھاتے ہیں. عام زبان میں اس کو کہا جاتا ہے کہ میں نے زبان دی ہے, میں اس کی پیروی کروں گا. یہی چیز عہد ہے. عہد کی استواری بہت اہم ہے. دین کی بنیاد بھی اسی پر کھڑی ہے اور دنیا کی بنیاد بھی اسی پر کھڑی ہے. اگر ہم عہد توڑنے لگیں, وعدے نہ نبھانے لگیں اور دوسروں کو وعدے کر کے تنگ کرنے لگیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا اور زندگی چلنی ناممکن ہو جائے گی. حد یہ ہے کہ اگر دو ملک آپس میں ہمسائے کے طور پر رہنا چاہیں تو وہ بھی عہد معاہدے کے بغیر نہیں رہ سکتے. دو بھائی अगर मां बाप का सहारा ना हो तो उसके बाद उन्हें अहद मुआहदे के तहत रहना पड़ता है। एक दूसरे को मानना, एक दूसरे को तस्लीम करना, एक दूसरे की कही हुई बात के ऊपर हमारे सारे आमाल खड़े होते हैं। मैं आपके पास आऊं, आपसे कहूं ये मामला करना है, आप इनकार कर दें तो वो मामला नहीं हो सकता, आप इकरार कर लें तो मामला हो जाएगा। ये अहद की बुनियादी शक्ल है। अहद की जो इंतहाई सूरत है वो ये है कि हम कसम खा के हलफ उठाकर कहते हैं कि मैं ऐसा करूंगा। जब आदमी हलफ उठा लेता है, कसम खा लेता है, तो इसका मतलब है कि उसने अहद मुआहदे की आखिरी शक्ल को इख्तियार किया है। अब इसकी खिलाफ वर्जी तो कबीरा गुनाह बन जाती है, और भी बड़ा गुनाह बन जाती है। चुनाचे फरमाया कि जब तुम कसम खा लो तो फिर उसका कफारा भी अदा करो अगर तोड़ो। इससे हम ये समझ सकते हैं कि अहद दोहरे जुर्म का शिकार हो गया। एक ये कि हमने अहद तोड़ा, दूसरा ये कि हमने खुदा को गवाह बनाया था और खुदा को गवाह बनाकर कसम खाई थी, उसको भी हमने ख्याल नहीं किया और उसको तोड़ डाला, इसलिए कफारा मुकर्रर किया गया। तो अहद की उस्तवारी के ऊपर दो मजीद बातें समझ लीजिए ताकि अहद के बारे में और मुतनब्बे हो जाइए। जब कोई भाई हमारा अहद कर रहा हो किसी के साथ, मिसाल के तौर पर रिश्ते की बात हो रही हो, हम कहते हैं हाँ हो गई रिश्ते में, इसके माने ये होते हैं कि हमने रिश्ते की बात की, उन्होंने इसको कबूल कर लिया, ये एक हल्का सा मुआहदा हुआ कि जी हाँ रिश्ता हो गया। अब रिश्ते के होने के दौरान में या रिश्ता के हाँ होने के बाद ये जाकर दूसरा शख्स उस रिश्ते को खराब करना चाहे या अपनी बात कर दे कि जी हमारे यहां भी एक रिश्ता है उस पर गौर कीजिए, तो फरमाया कि ये ममनू है। जब कोई सौदा हो रहा हो, जब कोई रिश्ता हो रहा हो, तो उसको मुकम्मल होने देना चाहिए। अगर वो सौदा नहीं होता तो हम हक रखते हैं जाकर करने का। इसी तरह अगर कोई रिश्ता हो रहा है तो उसको होने दीजिए, लेकिन अगर वो नहीं हुआ तो हम हक रखते हैं, हो गया तो फिर हमारा रास्ता बंद हो गया। अहद के ऊपर अहद, मंगनी के ऊपर मंगनी और निकाह के पैगाम के ऊपर निकाह का पैगाम, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नाजायज। गुनाहगार होगा वो शख्स जिसको पता हो कि इन दो के दरमियान रिश्ते की बात हो रही है या इन दो के दरमियान ये सौदा तय पा रहा है और वो जाकर कूदे और कूद कर अपना बीच में पैगाम दे दे, ये ममनू हो जाएगा, ये नाजायज होगा, इसको करने से इज्तनाब करना चाहिए। यानी पहली बात यह है कि अहद अगर बांधें तो उसको पूरा करें, जुबान अगर दें तो उसको निभाएं, और दूसरा यह कि जब कोई अहद मुआहदा किसी के दरमियान हो रहा हो, ख्वा वो सौदा हो रहा हो, ख्वा वो रिश्ता हो रहा हो, तो उसके बीच में मुदाखलत ममनू है, ये समझ लेना चाहिए। तीसरी बात ये सामने रखिए कि कुरान मजीद ने जहां अलबिर की वजाहत की है कि नेकी क्या है, हकीकी मानी में नेकी किसको कहते हैं, उनमें जिन चंद चीजों का जिक्र किया है उनमें ईफाए अहद यानी वादे की पासदारी का भी जिक्र किया है। यानी कोई शख्स नेकी के आला मुकाम तो क्या नेकी को, नेकी की हकीकत भी नहीं पा सकता जब तक वो अपने वादों को पूरा ना करे। अगर वो वादा तोड़ने वाला है, जुबान देकर उससे फिरने वाला है और अपनी बात कहकर उससे टल जाने वाला है, तो जान लीजिए कि उसके अंदर नेकी नहीं है, क्योंकि कुरान मजीद ने नेकी की जब हकीकत बयान की है तो उसमें सबसे बड़ी चीजों में जो चीज बताई है वो वादे को पूरा करना, वादे की खिलाफ वर्जी ना करना है। क्योंकि इस मैंने जैसा अर्ज किया शुरू में कि पूरे का पूरा दीन खड़ा ही वादे पर है, खड़ा ही मुआहदे पर है। कुरान मजीद खुदा की तरफ से हमारे लिए अहदनामा है। अगर आप पुरानी शरीयतों में देखें तो पुरानी किताबों को अहदनामे ही से ताबीर किया जाता है। बाइबल का नाम है अहदनामा अतीक, इंजील का नाम है अहदनामा जदीद, और कुरान भी खुदा की तरफ से एक अहदनामा है जो उसने हमारे साथ किया है। और इस अहदनामे के मुताबिक हमें अगर जिंदगी हम नहीं गुजारते, इसकी पैरवी नहीं करते, तो हमने मिसाकुन नबीईन की खिलाफ वर्जी की और खुदा के इस उतारे हुए अहद की खिलाफ वर्जी की। तो इसलिए अपनी जिंदगी में जब वादा करें सोच समझ कर करें, जब अहद करें सोच समझ कर करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा से हमें बहुत अच्छी मिसालें सामने आती हैं कि एक मौके पर आप तजारत के सफर में थे कि किसी साहिब ने कहा कि मैं ये चीज खरीदना चाहता हूं आपसे, सौदा हो गया, लेकिन खरीदने वाले के पास गालिबन पैसे नहीं थे पूरे देने को, तो उसने कहा मैं अभी आके आपको घर से ला कर दे देता हूं। आपने वहां पड़ाव डाला हुआ था, काफले के साथ थे, काफले ने आगे जाना था, जाहिर है लंबा सफर होता है तजारत में, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन तक उस आदमी का इंतजार करते रहे, क्योंकि आपने वादा कर लिया था कि मैं रुका हुआ हूं। ये ईफाए अहद की नहायत उम्दा मिसाल है कि आप सिर्फ वादा निभाने के लिए अपने सफर को रोक दें, आप अपने नुकसान कर डालें, तो ये ईफाए अहद की इतनी अहमियत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन तक आने वालों का इंतजार किया कि आने वाले ने आना है, वो मुझे यहां ना पाकर मायूस होगा। तो अहद की खिलाफ वर्जी में ही एक चीज वक्त की पाबंदी। जब हम कहते हैं कि मैं इतने वक्त तक पहुंच जाऊंगा, तो गोया हमने सादा तरीके से एक अहद किया है, लेकिन हमारे यहां बिलखसूस पाकिस्तान में इसको कोई अहमियत नहीं दी जाती। 4 बजे का मतलब होता है 6 बजे, 6 बजे का मतलब होता है 10 बजे, और शादी ब्याहों में आप अगर आप देखें तो लोग उस वक्त पहुंचते हैं जब हाल बंद होने वाला होता है। ये सूरत हाल इस वजह से है कि हमने अहद माहदे को वो अहमियत नहीं दी जो उसकी असल अहमियत है। हर चीज जब हमारी जुबान से निकलती है तो वो 2 शक्लों में होती है, या हम किसी को खबर दे रहे होते हैं, या किसी के साथ कोई मामला करने के लिए हाँ या ना कह रहे होते हैं। तो जब हम किसी के साथ मामला करने के लिए हाँ या ना कह रहे हैं, तो ये सोची समझी बात होनी चाहिए, उसे उसको पूरा करना चाहिए, उसको निभाना चाहिए, ताकि हम एक अच्छे शहरी की हैसियत से जिंदगी गुजारें और एक अच्छा मुआशरा वजूद में आए। क्योंकि जब अच्छा मुआशरा वजूद में नहीं आएगा, हमारे अहद मुआहदे दुरुस्त नहीं होंगे, तो ना कारोबारी जिंदगी चल सकेगी, ना सियासी जिंदगी चल सकेगी। हमारे पाकिस्तान में जो मसाइल हैं उनमें से एक बड़ा मसला यही है कि हम जिस क्वालिटी पर मुआहदा करके आते हैं, जिस क्वालिटी पर चीज खरीदने की बात करके आते हैं, वो हमें मुयस्सर नहीं आती। और इसी तरह जिस वक्त पर हमें मुतालबा होता है, जिस मौके पर हम चाहते हैं वो चीज हमें तैयार मिल जाए, उस मौके पर हमें मुयस्सर नहीं आती। इसी तरह बहुत सारे मामलात में सिर्फ अहद की खिलाफ वर्जी वो चीज है जो हमारे मुआशरे को अखलाकी एतबार से ना सिर्फ पस्ती की तरफ ले जाती है, बल्कि मादी तरक्की के एतबार से भी हमारे लिए बड़े नुकसान। हमारे लिए बड़े नुकसान खड़े कर देती है। आप वादा करते हैं जी कि आप ये चीज ले जाए, मैं आपको कल पैसे दे दूंगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन नतीजा क्या निकलता है कि उस कारोबारी को पैसा नहीं मिलता, उसका कारोबार खराब हो सकता है। उसने कोई मामला करना होगा जो उस रकम पर मुनहसर होगा कि आपकी तरफ से आएगी तो हम वो मामला करेंगे, लेकिन जब उसे और पैसे नहीं मिलेंगे तो वो मामला नहीं कर सकेगा। चुनाचे बहुत सारे काम जो मुआशरे में होने जरूरी होते हैं, वो महज हमारी वादा खिलाफी की वजह से पूरे नहीं हो पाते, और मुआशरे का चलता हुए निजाम में कदम कदम पर रुकावटें आती हैं और मुआशरा तरक्की की तरफ गामजन नहीं होता। अखलाकी गुनाह इतना बड़ा है कि मैंने अर्ज किया कि वादा खिलाफी असल में कबीरा गुनाह है, और कबीरा गुनाहों से अगर हम नहीं बचेंगे तो दोजख में जाने से हमें कोई चीज रोक नहीं सकेगी। वा आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।